الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين أما بعد إيك صلوات ورد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. آج آپ کی خدمت میں قرآن کریم کے آیات سے انسان اور اس کی تربیت کے عنوان سے بعض نکات عرض کیے جاتے ہیں، اور خواہش یہ ہے کہ اس تفسیر قرآن کو ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں جب پیش کریں اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور ثواب ہمیں جو عطا فرمائے اس کو ہم ہدیہ کر دیں مرحومہ کے ثواب کے لیے انشاءاللہ. قرآن کریم کی جو ہمارے پاس آیات ہیں انسان اور اس کی تربیت کے عنوان سے، یہ ایک بذات خود تفصیلی موضوع بن جاتا ہے. انشاءاللہ اس کو ہم لے کے چلیں گے، لیکن جس پہلو کو آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا وہ ہمارے پاس پہلو ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو اس دنیا کے اندر جو خلق کیا ہے اس کا بنیادی ہدف اور مقصد وہ کیا ہے. اس کے اوپر تو تفصیلی گفتگو نہیں کریں گے، لیکن آغاز ادھر سے ہی کریں گے، کیونکہ زمین کے حوالے سے خداوند متعال نے واضح طور پہ یہ بات بیان کی ہے کہ انسان کو اللہ نے اس دنیا میں نشوونما کے لیے خلق کیا ہے، اور انسان کے نشوونما کے لیے خداوند متعال نے زمین کو اس طرح سے قرار دیا ہے کہ اگر انسان اس زمین پر زندگی بسر کرے، چار نہ چار اس کی ایک تربیت جسمانی اور روحانی ہر دو ہوتی رہتی ہے. صرف ایک طرفہ اس کی تربیت نہیں ہے، بلکہ اس کی تربیت جسمانی اور روحانی ہر دو ہیں. جیسا کہ آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم عام روٹین لائف میں سوتے ہیں، جاگتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تو ہماری خود بخود اس دنیا کے اندر ایک نو تربیت ہوتی چلی جاتی ہے. لہذا بس اس سے یہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ زمین تربیت اور نشوونما کی جگہ ہے، آباد ہونے اور رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں پہ ہر چیز جو آ رہی ہے اس نے پھلنا پھولنا ہے، اور یہ پھلنے پھولنے میں کسی حد تک آزاد ہے اور ایک بڑی حد تک مجبور ہے. لہذا کوئی دن، کوئی لحظہ، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ انسان اس دنیا میں سانس لے اور اس کی جسمانی یا روحانی کوئی تربیت نہ ہو رہی ہو، یعنی نشوونما نہ ہو رہی ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. مثلا اگر آپ خوراک کھائیں یا نہ کھائیں، یہ دن رات کا گزرنا آپ کے جسم میں اضافہ کر دے گا. اسی طریقے سے آپ کچھ کریں یا نہ کریں، آپ کی روح بھی اسی طریقے سے نشوونما پائے گی. یا وہ روح کمال کی طرف جا رہی ہے یا نقص کی طرف جا رہی ہے. درمیانی کوئی صورت روح کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی، بالکل اسی طرح جیسے جسم کے لیے کوئی صورت نہیں ہے. جسم اپنی وہ نشوونما گزار رہا ہے، چاہے اس کا قد بڑھے یا نہ بڑھے، وہ اس کے اندر ایک تبدیلی گزرنے والا زمانہ وہ لے کے آ رہا ہے. اچھا، اس سے ہمیں بس یہاں پہ ہم یہ مطلب لیں، میں آیت کو آپ کی خدمت میں اس کے ساتھ سنا دوں. سورہ کہف آیت نمبر 7 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، اِنَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، جو کچھ زمین کے اوپر ہے اللہ نے اسے زمین کے لیے زینت بنایا ہے. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم ان کو بلا میں مبتلا کریں کہ ان میں سے کون بہترین عمل انجام دیتا ہے. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ زینت آباد اس لیے کی ہے تاکہ عمل کی طرف انسان کو مبتلا کر سکے. یا سورہ ملک میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، الذی خلق الموت والحیات، موت اور حیات دونوں اللہ کی مخلوق ہیں جو اللہ تعالی نے قرار دی ہیں. نہ حیات میں ہمیں اختیار ہے نہ موت میں ہمیں اختیار ہے، لیکن اس میں اختیار ہے کہ کس انداز میں آئے، یعنی یہ موت اور یہ حیات کیسے بسر ہو، کیسے گزاریں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے. بہرحال یہ پہلی بات قرآن نے ذکر کی کہ حیات اور موت وہ اللہ کی خلقت ہے. کیوں یہ اللہ نے حیات اور موت رکھی ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، خلق اللہ نے اس لیے کیا ہے کہ تمہیں مبتلا کرے کہ تم میں سب سے بہترین عمل کون انجام دیتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ بہت طاقتور اور مغفرت کرنے والا ہے. ये दो आयात काफ़ी हैं क्योंकि इस मौजू के ऊपर आयात कुरान की शायद 30 या 40 से ऊपर चली जाएं अगर हम इसके मानी की रियायत करें। हम इन दो आयात से एक नतीजा ले लें ताकि अगले पॉइंट में हम वारिद हो सकें। यहाँ से कुरान करीम के इन ज़ाहरी आयात से ये मतलब हमारे सामने आया, खिलकत को अल्लाह ने इसलिए करार दिया है ताकि इब्तला मुब्तला हो, बाज़ चीज़ों में मुब्तला होने के बाद अमल अंजाम देगा। ये अमल जो है ये इंसान की रूहानी और उखरवी ज़िंदगी का बायस बनता है, लिहाजा ये चार ना चार हम अंजाम दे रहे हैं। हर आन ये सिलसिला और ये प्रोसेस चल रहा है। अव्वल खिलकत अल्लाह ने हयात और मौत की कर दी, क्यों की है? खूबसूरत बनाया जीनत को, क्यों खूबसूरत बनाया, क्यों इस तरह से अल्लाह ताला ने सारा निज़ाम रखा ताकि जिस्मानी नशोनुमा भी हो, और मुब्तला क्यों किया है ताकि इंसान वो दर हकीकत अमल को अंजाम दे। अमल अंजाम देगा क्या होगा, वो रूह की नशोनुमा और अगला जहान नशोनुमा पाएगा, यानी अगले जहान का कलम और उसकी खिलकत इंसान के हाथ में है। अल्लाह ने हमारे हाथ में ये रखा है कि हमने उसे जन्नत बनाना है या हमने उसे जहन्नम बनाना है। ये बात जब हमारे लिए वाज़ह हो गई कि ज़मीन नशोनुमा के लिए आप बीज ले आएँ, कीड़ा ले आएँ, पत्थर ले आएँ, इंसान ले आएँ, जो कुछ ज़मीन पर है वो नशोनुमा पा रही है, उसने एक हद तक पहुँचना है फिर मर जाना है। हर एक की अपनी एक सतह ज़िंदगी है। मसलन एक छोटी सी चूंटी है वो मुमकिन है कि बिलफर्ज या एक रींगने वाला छोटा सा कीड़ा है, सूंडी है, आप देखते हैं उसकी नशोनुमा होती है, वो एक खोल में बंद हो जाता है, उधर उसके पर निकलते हैं, वो फ़ज़ा में उड़ता है और उसके बाद उसकी मौत आ जाती है, ख़त्म हो जाता है। लिहाजा हर शय की एक ज़िंदगी है और एक मौत है, और ये नशोनुमा पाने की ज़िंदगी है। इसलिए इधर से हम ये नुक्ता लें कि ज़मीन आबाद होने और बसने के लिए नहीं है, नशोनुमा पा के चले जाने के लिए। इसलिए हर शय इस दुनिया में इसी तरीके से है, टाइम पीरियड बस मुख्तलिफ है, किसी के दिन का अदद जो है थोड़ा ज़्यादा है, किसी का कम है। रुकने वाला इधर कुछ भी नहीं है क्योंकि सूरज चांद सितारों की जो हरकत है, ज़मीन की हरकत है, वो इंसान के लिए बोसीदगी को पैदा करती है। तरोताज़गी लाने के बाद बोसीदा हर चीज़ को ये हरकत कर रही है, यह हरकत ही हमारे इख्तियार से बाहर है। लिहाजा ये नतीजा हमने पहले पॉइंट में ले लिया, ज़मीन पर जो कुछ है वो नशोनुमा पा रहा है और ये नशोनुमा पाने के बाद एक मकदार एक हद तक पहुँचेगा, उसे मौत मैसर आ जाएगी। मौत अल्लाह की एक खिलकत है, यानी अगले जहान में मुंतकिल हो जाएगा। फिर इसने इस दुनिया के अंदर जो कुछ किया हुआ था और जो कुछ बनाया था उसको अब वो पाएगा। अच्छा, यहाँ पे इंसान का निज़ाम अल्लाह ने कैसे रखा है, ये तो हमने एक अमूमी बात को देखा, क्योंकि हर शय की मौत अल्लाह ताला ने इस दुनिया में करार दिया, हयात के बाद अलबत्ता हयात है, फिर मौत का तोहफा उसे मिल जाता है। मौत हकीकत में एक कमाल है, इसको किसी और मौरिद में इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट, इंसान की ज़िंदगी खुदा ने इस दुनिया में कैसे रखी है। इंसान इस दुनिया में हकीकतन मोहताज खल्क हुआ है, उसको इस चीज़ की एहतियाज है कि वो इस दुनिया के अंदर जो ज़िंदगी बसर करे वो ज़िंदगी हर दो जहे से उसने गुजारनी है, मादी एतबार से भी, मानवी एतबार से भी। अलबत्ता वो जो बात की रूह वाली ज़िंदगी है वो इस मादी ज़िंदगी के ऊपर कायम है, इस मादी ज़िंदगी के ऊपर खड़ी है, लिहाजा इस दोनों ज़िंदगियों में रब्त को ईजाद करना लाजिम है। इसलिए यहाँ पे अब आप दिक्कत करें कि जब इंसान का निज़ाम कुरान ने ज़िक्र किया तो कुरान यहाँ पर इंसान का राबिता जोड़ रहा है, जो मुहिम चीज़ है, मादी ज़िंदगी का मानवी ज़िंदगी से ताल्लुक़, ज़ाहिरी दुनियावी ज़िंदगी का उखरवी ज़िंदगी से ताल्लुक़, इस ताल्लुक़ के ऊपर ईमान लाना हमारे लिए ज़रूरी करार दिया गया। लिहाजा अब हम दूसरा पॉइंट, जो पहला पॉइंट तो आपने देखा कि ये नशोनुमा के लिए, दूसरा जो अहम पॉइंट है कि मादी ज़ाहिरी ज़िंदगी उखरवी और अगले जहान की ज़िंदगी से गहरा ताल्लुक़ रखती है, दोनों आपस में रब्त रखते हैं। लिहाजा ये ज़ाहिरी मादी दुनिया अगले जहान के आबादकारी या तबाहकारी का बायस बनेगी, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया की कोई फिक्र ना करो, दुनिया के लिए कोई एहतमाम ना करो। नहीं, एहतमाम करना है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें अगले जहान में, कब हमें ये कब अगला जहान आबाद होगा, जब ये ज़ाहरी मादी दुनिया ये आबाद हमारे लिए होगी। ये एक दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं कि इस दुनिया में इंसान को फिर अल्लाह सुबहानो ताला ने मादी ज़िंदगी कैसे आबाद की है। लिहाजा मादी ज़िंदगी का हम निज़ाम अगर अच्छे तौर पे समझ लें तो हमारे लिए मादी ज़िंदगी के निज़ाम के समझने से उखरवी ज़िंदगी का निज़ाम भी बेहतर तौर पर हल होगा। यानी जब ये पता लग गया कि आखरत को आखरत कहते इसीलिए हैं चूँकि इस दुनिया के बाद है, इसलिए दुनिया सबब बनेगी आखरत की तबाही की और आखरत की आबादी की, आबादकारी की। जिसकी दुनिया मुनज़्ज़म नहीं है, जिसकी दुनिया जो है वो आखरत के एतबार से सही नहीं गुजरेगी, तो उसका नतीजा उसको अबदी तौर पे सहना पड़ेगा। इसलिए तमाम अंबिया व आइमा अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने शदीद ताकीद की कि अपनी इस मादी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करो, मुरतब करो, फ़िक्र के एतबार से, नज़रिए के एतबार से, अमल के एतबार से, गाफिलाना ज़िंदगी मत तुम बसर करो। लिहाजा जब ये हम पॉइंट अब जान गए तो तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, मादी ज़िंदगी अल्लाह ने कैसे आबाद की। अब मादी ज़िंदगी की ऊपर सारी की सारी बात आ गई, क्योंकि मादी ज़िंदगी के ऊपर ही आखरत आबाद है। लिहाजा जो इस मादी ज़िंदगी के बारे में सही अफकार और सही आमाल से आरास्ता नहीं है, ये सख्त खसारे में है। फ़िक्र भी ठीक होनी चाहिए, अमल भी ठीक होना चाहिए। फ़िक्र की तरफ अब आएँ, हमें रहनुमाई हमें करने की ज़रूरत है। इसमें सबसे पहले जो हमें बात जाननी है वो इंसान के बारे में आइडियालॉजी है और जहान के बारे में आइडियालॉजी है। जो शख्स इंसान और जहान के बारे में आइडियालॉजी बनाए बग़ैर वो दीन को इख्तियार करता है, आस्ता आस्ता सेकुलर दीन का या सेकुलर ज़िंदगी का मालिक बन जाता है। मैं ये जुमला दोबारा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, जो क़ुरान करीम या अहले बैत अलैहिस्सलाम की रवायात के तनाजुर में इंसान और इस कायनात के बारे में तफक्कुर इस्लामी या तफक्कुर इलाही को हासिल नहीं करता, चार ना चार वो इंसान और कायनात के बारे में क्या नज़रिया इख्तियार कर लेगा, गैर इलाही नज़रिया। अब गैर इलाही नज़रिया इख्तियार करके आप रोज़े रखते रहें, नमाज़ें पढ़ते रहें, दीगर नेकियां अंजाम देते रहें, आपकी ज़िंदगी तो मुतासिर हो गई, क्योंकि आपके असल जो थी वो तो मादी ज़िंदगी के पहले में सही फ़िक्र होगी तो मादी ज़िंदगी से मरबूत ऐसा अमल अंजाम दे सकेंगे जो आखरत को आबाद करे। लिहाजा सारी की सारी फिर तवज्जो किस पर देनी चाहिए, इंसान के बारे में क्या आपकी आइडियालॉजी और तफक्कुर है, कायनात के बारे में आइडियालॉजी आपकी क्या है। हम आए इंसान के बारे में अभी आइडियालॉजी को मुतालिया करते हैं। कुरान करीम ने वसत के साथ इंसान की मारिफत कराई है, ये बात मुसल्लमात में से है। जो इंसान यानी अपने नफ्स अपने आप के बारे में सही मालूमात नहीं रखता, सही आइडियालॉजी नहीं रखता, वो अपने लिए नफ़ा भी नहीं कमा सकता, अपनी अगली ज़िंदगी को भी बर्बाद कर बैठेगा। ये दुनिया तो उसकी बर्बाद होगी होगी, अगली दुनिया को भी वो बर्बाद कर बैठेगा। लिहाजा हमारे पास असल ज़ाबिता है ही ये कि हम इंसान की सही आइडियालॉजी और नज़रिए को इख्तियार करें, इंसान के बारे में क्या मौक़िफ़ है। क्योंकि आप इंसान और जहान और कायनात के बारे में मौक़िफ़ इलाही इख्तियार किए बग़ैर अगर नेक अमाल अंजाम देते रहें, माशरा पर असर अंदाज है, आप सिर्फ एक किस्म की रस्म अंजाम दे रहे हैं, उसके नतायज कुछ भी नहीं निकल रहे। चूँकि माशरा हमें इलाहादी एक तरफ आस्ता आस्ता ले जाएगा, हम उस इल्हाद को गले लगा के बस नमाज रोज़े की हद तक सारे दीन को मुकय्यद कर देंगे। यानी हमने खुशियां जो मनानी हैं वो लिबरल तरीके से मनानी हैं, जो गम मनाना है वो लिबरल तरीके से मनाना है, जो लोगों से मेल मिलाप और घर में रवाज ईजाद करने और सारे लिबरल और गैर इलाही हैं, और इधर से हम दावा करेंगे हम तो बड़े दीनदार हैं। इसे तो कुरान करीम और अहले बैत अलैहिस्सलाम के तनाज़ुर में दीनदार नहीं कहते। लिहाजा चंद नारे लगा लेना, हुकूमत इलाही के सिर्फ कायल होकर जज्बाती चंद बहसें कर लेना और एक रूटीन लाइफ बसर करना, ये लिबरल ज़िंदगी है, ये दीनी ज़िंदगी नहीं है। लिहाजा दीनी ज़िंदगी के लिए को इख्तियार करने के लिए लाजिम है कि सही इलाही पहले आइडियालॉजी हासिल करे। मैं मिसाल इसकी देता हूँ, मसलन इंसान के जिस्म की खुराक जो है वो हमारे पास मुख्तलिफ ग़ज़ाएँ हैं। अब अगर हम ग़ज़ाओं में या ग़ज़ाओं का सही इल्म नहीं रखते, या हम ग़ज़ा मुहैया नहीं कर रहे लेकिन उसके सोने जागने उसके फिरने वगैरह के एतबार से आने जाने के एतबार से सारे वसाइल उसके जमा करके दे दें, आया उसके जिस्म में ग्रोथ होगी या नहीं? यकीनन वो नशोनुमा नहीं पाएगा, क्योंकि नशोनुमा तब आएगा जब उसे ग़ज़ा मुयस्सर आए। अगर उसको ग़ज़ा मुयस्सर नहीं आ रही, इंसान को इंसानी बॉडी को इंसानी जिस्म को ग़ज़ा मुयस्सर नहीं आ रही, उसके अंदर ग्रोथ नहीं होगी, उसके अंदर नशोनुमा नहीं होगी। बेशक आप उसके अच्छे सोने के मौके पैदा कर दें, सारी फैमिली उसके आसपास इकट्ठी कर दें, आप उसके लिए सवारी का एहतमाम कर दें, आए जाए वो आराम से। अगर रूह इसी तरह अगर जिस्म के लिए आपने ग़ज़ा का खाने पीने का एहतमाम नहीं किया, जिस्म पतले से पतला होता चला जाएगा, कमज़ोर से कमज़ोर होता चला जाएगा। बेऐन ही रूह इसी तरीके से है। रूह के लिए आप नमाज़ों के ढेर लगा दें, रोज़ों के भी ढेर लगा दिए, सदक़े भी खूब दिए, जज्बाती बातें भी कर लीं, हुकूमत इलाही भी कायम कर ली, कानून इस्लामी भी ले आए, लेकिन उसे ग़ज़ा ही नहीं दे रहे, वो ग़ज़ा नहीं दे रहे, अंदर से रूह ज़ईफ़ है, कमज़ोर है। वो इमाम मासूम के साथ भी तमाम इन नज़रियात और तफक्कुरात के साथ जुड़ जाए, उसमें सकत ही नहीं है कि उनके हमरा चल सके। लिहाजा यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है? रूह को ग़ज़ा फराहम करें। रूह की ग़ज़ा क्या है? रूह की ग़ज़ा इल्म है, इल्म क़ुरानी, इल्म अहले बैत अलैहिस्सलाम। अगर इल्म नहीं रूह को मिलेगा, रूह कमज़ोर से कमज़ोर होती चली जाएगी। और ये वाला एक तारीख में बहुत बड़ा हादसा जो रूनमा हुआ, उसकी बुनियादी वजह यही चीज़ थी कि कौमों को, मिल्लतों को या माशरे को रूह की ग़ज़ा फराहम नहीं हुई, उन्होंने शौरी तौर पर इल्म को हासिल नहीं किया। लिहाजा जहाँ पर फिर इंतखाब और सिलेक्शन की बात आई कि किस राह का इंतखाब किया जाए, वहाँ पे उम्मत जो है वो शिकस्त खा गई। जैसे कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलायत का जब ऐलान किया गया, तो यहाँ पे कबायली निज़ाम में ढला हुआ माशरा, उसने तो कहा कि ये तो अपने चचाजात की हुकूमत हमारे सर पे कायम करना चाह रहे हैं, ये तो बनी हाशिम के कबीले को हमारे ऊपर मुसल्लत करना चाह रहे हैं। लिहाजा उस माशरे की ग्रोथ अभी इस सतह पर इल्मी तौर पर नहीं हुई थी कि वो फौरन इस चीज़ को पहचान सके, सिवाय चंद अफराद के। लिहाजा आपने देखा कि उस ये शहीद बाकरू सदर रहमतुल्लाह अलैह का तज़िया है, उनकी किताब अहले बैत अलैहिस्सलाम और उनके अदवार के हवाले से जो उन्होंने लिखी है, उसमें वो ये बात कहते हैं कि अख़लाक के अतबार से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी तरफ से अट्रैक्ट कर लिया था, और इतनी अट्रैक्शन थी कि उन्होंने जंगें लड़ी उनकी खातिर, लेकिन शौरी अभी लेवल नहीं बुलंद हुआ था, जिसकी वजह से वो शनाख्त सही तरह से नहीं कर सके। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल उम्मत में ऐलान कर रहे हैं कि अली अलैहिस्सलाम मेरे वसी हैं, मेरे खलीफा हैं, उम्मत के रहबर हैं, उम्मत के हाकिम हैं। लिहाजा इल्म जो है वो ग़ज़ाए रूहानी है। अगर रूह को ये नहीं ग़ज़ा देंगे, आप नेकियों के सारे ढेर भी लगा दें, वो ज़ईफ़ नातवान इस कदर होगी कि आगे चल फिर ही ना सके। लिहाजा ये एक हमारे पास चौथा नुक्ता आया कि जब कुरानी आइडियालॉजी की तरफ आप जाएं तो वो सबसे पहले मारिफत और इल्म और ईमान की बात करता है। हम अब इससे आगे और मुंतकिल हो जाते हैं, क्योंकि इन सब मौजूदात पे तफसीली गुफ्तगू हो सकती है, उस नतीजे तक पहुँचाना है जिसको हमने अभी आके लेके चलना है। कुरान करीम ने, ये मादी जहान की बात हो रही है कि मादी जहान के वसाइल इख्तियार करके सबसे पहले हमने रूह की तालीम का अहतमाम करना है, रूह को इल्म पहुँचाएँ, रूह को मालूमात पहुँचाएँ, हत्ता कि ये मादी मालूमात भी चाहिए। ये मादी दीनी और दुनियावी इल्म की तकसीम बातिल तकसीम है। हर वो इल्म जो इंसान को नफ़ा दे हासिल करना चाहिए, वो मैथमेटिक्स हो यानी इंसाइक्लोपीडिया मालूमात एक हद तक हो, जैसे मैट्रिक तक सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, ज़रूरी है। और आज तो ये बात बहुत आया है कि दीनी सब्जेक्ट भी वो बंदा सही तरीके से असलन समझ ही नहीं सकता जो ग्रेजुएशन पास नहीं है। यानी ग्रेजुएशन पास जब जहन आता है तो उसे दीनी तालीमात की सूझबूझ हासिल हो रही होती है, जो मैट्रिक पास ही नहीं है उसे असलन सही तरह से पता ही नहीं लग रहा कि क्या पढ़ा रहे हैं और क्या बातें हो रही हैं। लिहाजा ये एक ग्रोथ रूह की ज़रूरी है। इसे आप इस चीज़ को ख़ुद देखते भी होंगे कि कहीं पे आपने एडमिशन के लिए जाना है या आपने अगर कहीं पे इंटरव्यू देना है, आईक्यू टेस्ट लेते हैं। ये आईक्यू टेस्ट क्या है? वो देखते हैं कि इसकी रूह ने कितनी ग्रोथ की है। जिस्म तो माशाल्लाह जंगली भैंसे से भी बेहतर हालत में मौजूद है, लेकिन उसकी रूह कितनी है? यानी जिस्म को तो उसने इतनी ग़िज़ाएँ दी हैं कि अगला थोड़ा घबराहट में बैठा होता है, लेकिन आया रूह भी उसकी तवाना है या नहीं है तवाना, इसको मद्देनज़र रखना चाहिए। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जिस्म जितना बड़ा और कवि, रूह भी उतनी ही कवि नहीं हो सकते। रूह उसकी बड़ी छोटे बच्चे जितनी हो, जैसे छोटे बच्चे को थोड़ा सा डांट डपट करें या उसे कोई चीज़ दे लें, शोर मचाने लग जाता है और चीख पुकार शुरू कर देता है। बाज़ औक़ात घरानों में ऐसे हमें बंदे नज़र आते हैं, थोड़ी उन्हें तकलीफ़ पहुँचती है तो पूरा घर सर पर उठा लेते हैं, इधर चीखो पुकार, उधर तोड़ फोड़, इधर किसी को कुछ सुना देना, यानी इनकी रूह बड़ी मुख्तसर रह गई है। इसे रूह को परवान चढ़ाने की ज़रूरत है। ये मतलब जब हमने जान लिया, आए अब हम देखें मादी ज़िंदगी अल्लाह ने हमारी कैसे आबाद किया। चूँकि मादी ज़िंदगी के निज़ाम को सही नहीं समझेंगे, आखरत हमारी आबाद होना मुमकिन नहीं है। इसलिए अल्लाह सुबहानो ताला ने दुनिया और इंसान हर दो का बार बार तारुफ कुरान करीम में तफसीली तौर पर कराया। इंसान के लिए सबसे अहम तरीन चीज़ यह है कि इंसान को इज्तमाई मखलूक खल्क किया है। ये नुक्ता हमें याद कर लेना चाहिए। फ़र्द को नहीं अल्लाह ताला ने पहले उतारा, हव्वा जी जनाब हव्वा को अल्लाह ने ज़मीन पर उतारने से पहले आदम अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक़ जोड़ा है उनका। ना ये कि ज़मीन पर आदम अलैहिस्सलाम को अकेला उतार दिया और वह तन्हाइयों का शिकार हो रहे थे तो हज़रत हव्वा को साथ मिला दिया, ऐसा नहीं है। लिहाजा इंसान इज्तमाई खिलकत की सूरत में ज़मीन पर ढला है। लिहाजा इंसान ऐसा नहीं है कि अकेले किसी गार में किसी कोने में सबसे कट के ज़िंदगी बसर कर ले, ये इंसानी ज़िंदगी नहीं है। इसलिए सबसे पहली चीज़ क्या है, इज्तमाई तफक्कुर लेके आए। इज्तमा की हालत में अल्लाह ताला ने हमें ज़मीन के ऊपर उतारा है। अब इधर हम मर्द और ज़न का राबिता अल्लाह ताला ने इजाद करके ज़मीन पर भेजा, कानूनी और शरी ताल्लुक इजाद करके ज़मीन पर भेजा, और उसके बाद ये सिलसिला आगे चला और नस्ल आदम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ी। मर्द और ज़न को हम अब घराने के अतबार से मुतालिया करें, यह हमारा आज का मौजू था। क्योंकि हमने तरबियत फ़र्द के अतबार से नहीं मुतालिया करनी, क्योंकि कुरान करीम ने जो तरबियत के उसूल बयान किए पूरे कुरान की आप तमाम आयात देख लें, वो तमाम की तमाम आयात इज्तमाई ज़िंदगी में ढले हुई एक सूरत में तरबियत को का तसव्वुर पेश कर रही है। ना ये कि मर्द एक कोने पे चला जाए और वहाँ पे सारे दुनिया से कट जाए और अपनी तरबियत करके वहाँ पे बैठे, उसकी कोई तरबियत नहीं होगी। मसलन सब्र, साबिर हम बनना चाहते हैं, क्योंकि साबिर अगर कोई शख्स बन जाए बड़ी उसकी आखरत आबाद है। इन्नमा युवफ़ साबिरूना अजरहुम बग़ैर हिसाब, कुरान की वाज़ह आयत आ गई कि साबिर वो शख्स है कि उसको बेदूने हिसाब अल्लाह ताला अजर दे देगा जन्नत में सीधा, यानी उसके लिए कोई वहाँ पे रिकावट नहीं होगी, कोई उसे नहीं रोकेगा, सीधा साबिर इंसान जन्नत में। सवाल साबिर बनना कैसे है? बातों से, आयात सुना के, रवायात पढ़ के और वाकयात सुनने से तो साबिर नहीं बनता। मसा हमने ये मालूमात ले ली, मालूमात लेने से तो सब्र नहीं आ जाता। कब सब्र आएगा? जब नागवार चीज़ें हमारे नफ्स को पहुंचेंगी और उसके ऊपर रिस्पांस ना दें, रिएक्शन ना दिखाएं, अंदर झील जाएं हम। नहीं झीलेंगे सब्र नहीं आएगा। अच्छा, अब तरह तरह की मुश्किलात हैं, लोगों के रवैये हैं। अच्छा, इसी तरीके से बहुत सारे अपने इज्जत ज़िल्लत के मसाइल हैं। अच्छा, तीसरी तरफ से आ जाएं, जिस्मानी मुशक्क़त काटनी पड़ती है, मर्ज़ इंसान को लाहिक हो जाता है, तंग करता है, वसवसे और सुएज़न अंदर इंसान को तंग करते रहते हैं, जकड़ा हुआ इंसान इस तौर पे कि इंसान को हर तरफ से मुश्किलात के अंदर कोई एक इधर से सुई चुभ रही है, उधर से सुई चुभ रही है, जो शोर मचाता रहता है साबिर नहीं बनता। सब्र के ख़िलाफ़ है जज़ा फ़ज़ा। जज़ा फ़ज़ा कहते हैं कि खूब शिकवे करें, मतलब उंगली पे कट लग गया है तो 100 दफ़ा तो सुनाए कि बड़ी दर्द हो रही है। जैसे किसी ने नमाज शब पढ़ी तो खबर ही नहीं थी किसी को कि इसने पढ़ी है, तो दिन के टाइम पानी पीते हुए कहता है कि कोई नमाज शब पढ़े कितनी प्यास लगती है, 10 गिलास तो पी चुका हूँ। अब वो बताना चाहता है कि भाई मैंने नमाज शब पढ़ी थी, तो इसी तरह से उस बेचारे को दर्द हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, वो आसमान सर पे उठाया है उसने, सब्र के ख़िलाफ़ है ये। सब्र करें अंदर जितना कर सकता है इंसान। अच्छा, अब सब्र करेगा तो साबिर बनेगा नफ्स, साबिर नहीं बनेगा तो फिर अगला जहान कैसे आबाद होगा। इसकी एक और मिसाल आपकी खिदमत में दी जाए कि रवायात में वारिद हुआ है कि क्योंकि नागवारियाँ लोगों के अंदर तो हैं, इज्तमाही दुनिया में तो असल मसला ये है, असल इज्तमाही दुनिया में खुशगवारी अगर एक दो हैं तो 10 नागवारियाँ इंसान को पेश आती हैं, लिहाजा अल्लाह ताला ने रखी इसीलिए। और उसमें सबसे बड़ी नागवारी क्या है, ज़ुबान से कोई ऐसे कलिमात निकल आते हैं, कोई ऐसे आपस में रवैये इख्तियार हो जाते हैं, कोई इंसानी तबीयत कभी किसी की बोझल होती है, कभी किसी का दिल तंग होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के अवामिल हैं, असबाब हैं कि जो इंसान को घेर लेते हैं। अब ये अल्लाह ताला ने कसदन इरादतन ये अल्लाह ताला ने रखा है, हत्ता कि क्योंकि इस ये यानी ये सुइयां अल्लाह ने हर एक को चुबोनी हैं, और इस चुबोने के बाद तकाजा ये है कि सब्र करो ताकि साबिर ये नफ्स साबिर बने। हत्ता कि रवायात में वारिद हुआ है कि अगर एक इंसान पूरी दुनिया तर्क करके, मतलब आज की ज़ुबान में कहते हैं यूरोप चला जाए, यूरोप में एक जगह पे फ्लैट ले ले, या मसलन एक जजीरे पे चला गया, रवायात में कलमाए जजीरा वारिद हुआ है, कोई उसे तंग करने वाला ना हो, अल्लाह सुबहानो ताला एक फरिश्ते को इंसानी शक्ल में भेजेगा ताकि वो अपनी ज़ुबान से कुछ ऐसे अल्फाज बोले कि इसे तंग हो ये, या ऐसा रवैया इख्तियार करके इसे तकलीफ़ पहुँचे। क्यों ये तकलीफ़ पहुँचे? ताकि नफ्स साबिर बने। अच्छा, नफ्स अगर साबिर ना बने तो क्या होगा? अब ये भी रवायात में वारिद हुआ है, इंसान जब मरेगा अंधेरा ही अंधेरा हर जगह है, सन्नाटा छाया हुआ है, और उस तारीकी से और उस सन्नाटे से शदीद खौफ और वहशत उसके अंदर तारी है, ढूंढ रहा है किसी आदमजात को, कोई दोस्त अहबाब मिल जाए ताकि उसके साथ अपनी ये तन्हाइयों को वो आबाद कर सके। उधर से देखता है कि बड़े ख़तरनाक अफराद आ रहे हैं, जैसे पुलिस मैन आ रहे हों, और उन्होंने हिसाब किताब करके ऐसी खौफनाक जगह मुझे फेंकना है जिसकी कोई हद नहीं, और मेरे उनका सामना करने की असलन हिम्मत नहीं है। इतने में देखता है कि एक अचानक रफ़ीक, बड़ा मानूस और बड़ा उसे महबूब जो वो समझता है शक्लो सूरत, वो महबूब शक्लो सूरत इख्तियार करके एक दोस्त ऐन जवानी की ओज पर पहुँचा हुआ उसके सामने आ जाता है, और वो उससे मिलता है तो सारा का सारा उसका खौफ और दबदबा भाग जाता है, उसकी रौनक आबाद हो जाती है। लेकिन जब उधर से वो पुलिस मैन मुनकर नकीर को आते हुए देखता है तो इसके होश उड़ने लग जाते हैं। यहाँ से ये रफ़ीक भागा भागा आगे जाता है, और इधर से एक और दोस्त भी होता है, वो भी आगे भागने की कोशिश करे, वो कहता है नहीं तुम सारे बैठे रहो, मैं अकेला काफ़ी हूँ। उनके पास जाता है, वो कहता है इससे क्या तुमने लेना है? वो कहते हैं कि हमने इससे सवाल जवाब करना है, ये फ़लाँ फ़लाँ। कहता है मुझसे करो, मैं जवाब देता हूँ। यहाँ तक कि वो उसे फारिग करके वापस आ जाता है और इसका खौफ भाग जाता है। रवायात कहती हैं ये रफीक सब्र था, सब्र है कि जो ये रफीक बन जाएगा, जो सब्र ही नहीं कर सका अपनी ज़िंदगी में, साबिर नफ्स नहीं बन सका, अब आखिरत में कौन है कि जो इसे बचाएगा, कौन है जो उसकी तन्हाइयाँ दूर करेगा? ये आल औलाद तो नहीं है जिसके लिए उसने सारी उम्र वक्त गुजार दिया है, खिलाने के अलग पैसे और फिर निकालने के पैंपर की सूरत में अलग पैसे खर्च उठाता रहा, बस ये तो नहीं औलाद आके उसके लिए कुछ काम करेगी। औलाद तो कब्र के दहाने तक पहुँचाएगी और फेंकेगी खुदा हाफिज़, ये भी रवायात के अल्फाज हैं। सिर्फ अमल ऐसा होगा, जोजा चीख चला रही होगी, बच्चे भी रो रहे होंगे, रवायात में वारिद हुआ है कि वो कब्र के दहाने तक पहुँचाएँगे, अंदर लेटाएंगे, वो चीखें मार रहा होगा मत जाओ मत जाओ, वो फिर मट्टी भी ऊपर डाल रहे होंगे। एक चीज़ है जो कब्र में उसके हमरा दाखिल हो जाएगी और वो उसका अमल है। लिहाजा आपने इस जगह पर मुलाहजा किया कि साबिर इंसान अल्लाह ताला बनाना चाहता है, उसके लिए इज्तमाही ज़िंदगी ज़रूरी है, इसलिए आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा का जोड़ा बना के अल्लाह ने भेजा। इसे इंसान की इज्तमाही ज़िंदगी की तरफ हमें आना चाहिए। कुरान ने इस चीज़ का दर्स दिया है कि तुम इज़्दवाजी ज़िंदगी बसर करो, कंवारेपन की ज़िंदगी बसर ना करो, एक घरेलू ज़िंदगी बसर करो, ख़ानदानी ज़िंदगी बसर करो। ठीक है, उसमें नागवारियाँ हैं, उसमें मसाइल हैं, उसमें मुश्किलात हैं, ये तुम्हें परवान चढ़ाने के लिए, ये ना हो तो फिर तो दुनिया दुनिया ना रही। इसलिए इंसान ने साबिर भी बनना है, शाकिर भी बनना है, अल्लाह ताला के ऊपर राज़ी होने वाला भी बनना है, मुतवक्किल भी बनना है, शुजा भी बनना है, कासिब जो कमाने वाला हो, मुजाहिद जो ज़हमत अल्लाह की राह में कोशिश करने वाला हो, ये सारे के सारे इंसान ने अपने अंदर कमालात को लेना है, और अल्लाह ने दुनिया ऐसी बनाई है, वो दुनिया में ईमान के हमरा ज़िंदगी बसर करता रहे और सब्र करता रहे, तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा उसके अंदर देखें कमाल नशोनुमा पाने लग जाएगा। यहाँ पर हम पहुँच गए इस नुक्ते की तरफ कि मर्द और जन से घराना आबाद होता है, ये दो घराने की बुनियाद हैं और यही दो मर्द और जन पूरे माशरे की बुनियाद हैं। जिस तरह एक चीज़ होती है, मसलन आप एक ईंट लें, उसके ज़र्रे ज़र्रे करते रहें, एक ज़र्रा आखिर में रह जाएगा जिसके ऊपर पूरी ईंट का तमाम अज्जा कायम है। इसी तरह माशरा जो है, जो सोसाइटी आपको नज़र आती है, मसलन हमारा वतन अजीज़ पाकिस्तान के 14 अगस्त के हवाले से हमें नेमत आज़ादी अल्लाह ताला ने इनायत फरमाई और उसकी मुबारकबाद भी आपको पेश की जाती है कि उसकी रात आम पहुंची है और अल्लाह ताला हकीकी माना में हमें आज़ाद होने की तौफीक भी इनायत फरमाए। कि इसमें आप देखें कि इस पूरे माशरे को अगर आप टुकड़े टुकड़े करें, कहाँ पे बात ख़त्म होगी? मर्द और जन के इज्तमाई तौर पर एक घराने के ऊपर। आए हम इस मर्द और जन को समझें, नहीं मर्द और जन को समझेंगे या वो खुद अपने आप को नहीं समझेंगे, एक सेहतमंद और तंदुरुस्त घराने को जन्म नहीं दे सकेंगे, बीमार घराने को जन्म देंगे, अफसुर्दा घराने को जन्म देंगे, आलूदा जो रूही तौर पे आलूदा ऐसे घराने को जन्म देंगे। लिहाजा मर्द और जन को अपने तौर पे समझना चाहिए। हम इधर आगाज़ जन से करते हैं, अलबत्ता मर्द के हुकूक अदा करने के अतबार से नहीं, क्योंकि ये गलती अक्सर मौलाना हजरात करते हैं जिसकी वजह से बकिया बातें भी समझ नहीं आती। लिहाजा हम सही तरतीब कि मर्दों पे क्या आयद होता है ख़वातीन के एतबार से कि उनके ऊपर जो हकूक आयद हों। कुरान करीम ने इसका बड़ा खूबसूरत तारुफ कराया और रवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम ने भी बड़ा खूबसूरत तारुफ कराया है। उसको इख्तियार करें, मर्दों पर लाजिम है कि उसको इख्तियार करें। इफराद तफरीद दोनों ही गलत हैं। खातून के ऊपर बेजा सख्ती, बेजा उसके साथ बदसलूकी, ये भी गलत है। और ये भी गलत है कि खातून है उसको सारे के सारे इख्तियार दे दिए जाएं और खातून मर्द और मर्द जो है वो बेचारा जन हो जाए, मुज़क्कर मोनस अपनी जगह बाकी रहे लेकिन मर्दानगी खातून को ट्रांसफ़र कर दे और वो सारे फ़ैसले कर रही है, वो इशारा करे तो मर्द आपके सामने बातें करते ही गायब, वो दूसरा इशारा करे तो वहाँ पे सारे घर के मेन्यू भी तब्दील हो जाए। नहीं, इस ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। कंडीशन कैसी होनी चाहिए कि जन और मर्द अपने आप को संभालें। यानी मर्द का मतलब ये भी नहीं है कि अगले को ऊंची आवाज़ में बोल के दबा दे, मारपीट शुरू कर दे या जलील व ख़ार करना शुरू, ये मर्दानगी नहीं है, ये भी एक बुजदली या एक नाकाम इंसान की अलामत है। और ये इफरात भी नहीं होना चाहिए कि जो खातून का शोबा नहीं बनता उस शोबे में भी वो मुदाखलत करना शुरू कर दे। अच्छा, फिर हकीकत क्या है, क्या हदूद दीन इस्लाम ने मुकर्रर की है? क्योंकि गर्व तो इस बात का कायल है कि जिस्मानी थोड़े से इख्तलाफ के अलावा मर्द और जन में कोई फ़र्क ही नहीं है, लिहाजा वो उस जब वो उस फ़र्क के कायल नहीं हुए तो उनके घराने बुरे तरीके से बर्बाद हो गए। और दीगर जो बहुत सारे मसाइल हैं वो भी इस वक्त गर्व में रहने वाले अफराद खसूसन जानते हैं। और वो शर्क के घराने, जैसे कि शहरी ज़िंदगी पाकिस्तान में भी ज़्यादातर ऐसी है कि वो चार ना चार गर्व के तरीक़ों पे चल रही है और वही मसाइल उनके घरानों में भी पैदा आस्ता आस्ता हो रहे हैं। अच्छा, इसका ज़्यादा नुकसान कहाँ निकलता है? ज़्यादा नुकसान उनका सेहतमंद घराना वजूद में नहीं आता तो आखरत के अतबार से ये निकलता है। और दूसरा, एक सालिम इस्लामी मुआशरा वजूद में नहीं आता जो कि दीन इस्लाम जो जिसकी तरवीज करता है। लिहाजा इस मकाम पर आएँ अब हम मर्द और जन के किरदार की तरफ थोड़ा सा गुफ्तगू करें। शायद हमारे अगर इंशाल्लाह ये जिस तरह से हमने इसाले सवाब का दर्स कुरान करार दिया है, इसका सिलसिला जो चलेगा उसमें इस मौजू को पहले लेके जाएंगे, क्योंकि तरबियत इंसान को हमने इज्तमाई एंगल से देखना है। इज्तमाई एंगल से अगर हम मुतालिया करें, स्टडी करें, तो उसमें जन को हम अभी अपने पेश नज़र रखते हैं और देखते हैं कुरान करीम ने क्या हुक्म दिए। बाज़ अहकाम को तर्क करेंगे और फिर इधर से हम तरबियत औलाद की तरफ वारिद होंगे, क्योंकि इंसान यानी वालिदैन अपने आप की तरबियत ना करें तो जितने जतन कर लें औलाद की तरबियत के, वो सारे के सारे बेकार जाएंगे। वो जितने उलमा से उसे नसीहतें करा लें, जितने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ मदारिस में बिठा लें, दर्स सुना दें, कोई असर नहीं है। क्योंकि जो वालदैन कर रहे हैं वो उन्होंने पकड़ना है, ना कि वालदैन जो कह रहे हैं वो पकड़ना है, वो तो नहीं उनसे पकड़ा जाएगा। इसलिए ये तरबियत का सबसे पहले, इसलिए रवायात में भी वारिद हुआ है कि कूनु दुआतन, कि तुम लोगों को बुलाओ, दावत दो, लेकिन बग़ैर अलसिनतकुम, अपने ज़ुबानों से नहीं, अपने अमल से, अमल से दावत दो। लिहाजा आएँ अब हम इस हवाले से ज़न को मुतालिया करते हैं, लेकिन ज़न का जो पहलू है वो घराने के एतबार से, क्योंकि और भी दीगर पहलू हैं। इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो है कि ख़ातून की कीमत क्या है दीन की निगाह में, क्या हैसियत है। मतलब गर्ब ने तो एक शो पीस रख दिया है, कोई इश्तहार टायर का क्यों ना हो, टायर में ख़ातून का क्या काम, उधर भी खातून चलो के उन्होंने डाल दी। कोई डबल रोटी का इश्तहार है उसमें भी खातून को डाल दिया, तो क्या खातून का किरदार शो पीस का है उधर, यानी जीनत। शो पीस से क्या होता है कि जीनत के लिए हमें एक पीस चाहिए, उन्होंने खातून को इसी के लिए रखा है। वो कोई अपने जिस्म की नुमाइश करते हुए या मुस्कुराती हुई कोई ऐसी सूरत इख्तियार करे। और ये मार्केटिंग में, पूरी दुनिया में ये पढ़ाया जाता है कि मार्केटिंग में अगर एक चीज़ की आपने मार्केटिंग करनी है, जो अफराद या दो दोस्तान इससे वाबस्ता हैं, ख़ुद वो इस बात को जानते भी हैं, तो वो कहते हैं कि खातून का होना मार्केटिंग में ज़रूरी है, उससे मर्द जज्ब होते हैं या एक जीनत बन जाती है। दीन इस्लाम ने उसके जीनत होने का इनकार नहीं किया, लेकिन शो पीस होने का इनकार किया। वो शो पीस नहीं है, उसकी हैसियत इतनी कम नहीं है दीन इस्लाम की निगाह में। मसलन दीन इस्लाम की निगाह में इतनी अहमियत है, पूरे कुरान में सूरतुल रिजाल वारिद नहीं हुए, लेकिन सूरतुल निसा वो वारिद हुई है, और बहुत तुलानी है, कहीं आपको सूरतुल रिजाल नहीं मिलती। इसलिए खातून को अहमियत दी। अच्छा, अहमियत क्या है कुरान की निगाह में? कुरान की निगाह में सबसे पहली अहमियत यह है कि वो मोमिन और तय्यबा हो, पाकीज़ा हो। वो जो अमल अंजाम देगी, वो जो ईमान को इख्तियार करेगी, ये अमल और ईमान वो उसकी असल हैसियत है, इसको उसने कायम रखना है, बाकी रखना है। मुमकिन है कि उसकी इस दवाजी ज़िंदगी में फिरआउन उसे मिल जाए, जैसे जनाब आसिया थी। मुमकिन है कि पैगम्बर मिल जाए, जैसे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को, के अजवाज को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिल गए। मुमकिन है कि बदकारा हो वो ख़ातून, लेकिन फ़िक्री एतबार से, अमली एतबार से वो बदकारा नहीं है, फ़िक्री एतबार से मुनहरिफ है, जैसे नूह अलैहिस्सलाम व लूत अलैहिस्सलाम की बेगमात। या मुमकिन है कि वो मर्दों से भी आगे निकल जाए और इतनी फजीलत हासिल कर ले कि उसके नाम की पूरी सूरह कुरान नाजिल करे, जैसे सूरह मरियम है, जनाब मरियम, उनकी पाकिजगी की जो गवाही है वो कुरान करीम ने दी। लिहाजा जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा का जो किरदार है वो असल खातून की कीमत है इस्लाम की नज़र में, वो उसकी हैसियत है। उसकी कीमत और उसकी हैसियत ना उसका जिस्म है, ना उसके मुख्तलिफ तरह के खाने बनाने वगैरह की तारीफ़ें हैं, ये सारी चीज़ें बात की हैं। असल उसकी पहली कीमत ये है। अलबत्ता ये बात ईमानी एतबार से हमारे लिए काफ़ी है, हम इस मौजू की अभी आयात नहीं पढ़ते, इंशाल्लाह इसके मौजू में दरमियान में आगे आएंगे। दूसरा नुक्ता, खातून को बाइज्जत खिलकत अल्लाह ने खल्क किया है। किसी भी माशरे में खातून इज्जत की अलामत ना समझी जाती थी, ना इज्जत की मुस्तहिक समझी जाती थी। ये दोनों जुमले याद रखें, किसी भी माशरे में ना खातून इज्जत की अलामत समझी जाती थी और ना ही वो इज्जत की मुस्तहिक समझी जाती थी। एक इस्तेमाल की चीज़ या एक इंसान के लिए बदनामी का धब्बा, ये समझते थे। दीन इस्लाम ने इस बातिल शैतानी तफक्कुर को ख़त्म किया और खातून को कदर कीमत क्या दी, ईमान और रूह के अतबार से बराबर हैं, रूह के अतबार से कोई फ़र्क नहीं है। मरहला आ जाए ईमानी अमल का और रूह के अतबार से मर्द जन में कोई अमल तकसीम नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं मर्द जन तकसीम जो है वो जिस्म के अतबार से है, ना कि रूह के अतबार से तकसीम है। लिहाजा जब कलमा इंसान कहते हैं तो उसके अंदर मर्द जन दोनों आते हैं। कुरान की आयात हैं, अभी वक्त की किल्लत की तरह वजह से उस तरफ नहीं जाते। दूसरी चीज़, खातून को बाइज्जत कुरान ने दी करार दिया है। रवायात अहले बैत इस मामले में हमारे पास कसीर है। मसलन बाइज्जत होने की क्या अलामत है? उसकी रजामंदी से उसकी शादी हो, मीरास में उसका हक होना चाहिए, मीरास उसे दी जाए। आज भी ये वाला मसला ख़ानदानों में मौजूद है कि खातून को मीरास नहीं देते वो,
कहते हैं उसे ज़रूरत ही क्या है, या ख़ामोशी से वो खा जाएंगे, शोर मचाए तो उसको बदनाम करना शुरू कर देते हैं। ये जो अफराद हैं जो खातून तक मीरास को नहीं पहुँचने देते, एक तो जुल्म इस दुनिया में कर रहे हैं क्योंकि माल खा रहे हैं, अगर वो खातून राज़ी नहीं उस जगह पर तो उनकी इबादतें भी राय वो होंगी, बातिल हो जाएंगी, और आखिरत में उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने लिए दोज़ख़ और जहन्नम का सरमाया इकट्ठा कर लिया। लिहाजा दीन इस्लाम ने सूरत निसा में वाज़ तौर पर वो सूरह निसा की इब्तदाई आयात में ही मीरास के मसाइल आ गए। नंबर तीन के बयान किया कि जब शादी हो जाए तो उनके साथ कैसा सलूक करो, इज़्ज़त वाला सलूक करो। इसलिए ये रवायात कसीर हैं हमारे पास, मैं चंद आपकी खिदमत में पढ़ता हूँ। और इसी तरह अभी हैसियत ज़न के ऊपर हम इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। हैसियत ज़न में हम अब जिसको फोकस कर रहे हैं क्योंकि बकिया नुकात अपनी जगह पर हैं, उसके लिए हमें ज़्यादा गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं है। खातून की असल ज़रूरत है कि उसे इज़्ज़त दी जाए। इज़्ज़त का मतलब क्या है? उसका एहतराम किया जाए, उसे मोहब्बत और उल्फत से पेश आया जाए। ये पहला हक दीन इस्लाम ने उसे दिया है। अब किस तरीके से इसको कुरान ने ज़िक्र किया, कुरान की एक आयत बयान करके हम रवायात की तरफ जाते हैं। कुरान सूरह निसा में ही बयान करते हैं कि फ़ाशरूहुन्ना, कि तुम उनसे आशरूहुन्ना, फ़ा नहीं है, वाह है, व आशरूहुन्ना बिलमारूफ़। ये सूरह निसा आयत नंबर 19 है, क्योंकि हम एक तरतीब से उस तरतीब से चलेंगे कि जो रवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम ने हमें तालीम दी है। मसलन मुमकिन है कि किसी की नज़र में अपने अपने फ़लसफ़े हों, इलाकाई कुछ फ़लसफ़े हैं, कुछ इधर उधर की बातें पढ़ के फ़लसफ़े हैं। हम दीन की निगाह में चलेंगे कि एक घर में जब आप खातून को ले कर आएँ तो रोटी कपड़ा मकान जो बुनियादी ज़रूरत है जिसे बेसिक नीड्स कहते हैं वो तो यकीनन सारे मानते हैं, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की अभी ज़रूरत नहीं है। आगे जाके थोड़ी सी हम गुफ्तगू करेंगे कि वो बेसिक नीड का मतलब क्या होता है, लेकिन ये बात मुसल्लम है कि उसके लिए लिबास का और घर में रहने सहने का और खाने पीने का और छत का ये अहतमाम ज़रूर करो। अच्छा, ये अहतमाम कर लिया, अब क्या करें? अब उसके लिए सबसे पहली चीज़ वो है इज़्ज़त उसे दो। इज़्ज़त नहीं दोगे तो ये जो तुमने उसे चीज़ें दी हैं, खाना पीना और दीगर चीज़ें, वो उसे थोड़ी सुकून पहुंचाएंगी, वो तो उसकी तकलीफ़ का बायस बन जाएंगी। लिहाजा अब आए इसमें, आपने कुरान की इस आयत को देखा कि कुरान करीम क्या बयान कर रहा है कि व आशरूहुन्ना बिलमारूफ है। मारूफ यानी उर्फ कहते हैं नेकी को, अमर बिलमारूफ आप जानते हैं, यानी ऐसे आमाल अंजाम दो कि जो अच्छे आमाल शुमार होते हैं, यानी जिनकी मारिफत हासिल करना ज़रूरी है। अब मारूफ को हम अभी नहीं खोलते, अगले दर्स में इंशाल्लाह खोलेंगे। आशरू हुन्ना, तुम मुआशरत करो, उनके साथ ज़िंदगी बसर करो, लेकिन अच्छे अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में। अच्छा, उनसे कोई नागवारियाँ सादिर नहीं होती, क्योंकि ज़ुबान को गुस्से के आलम में खातून के कोई कंट्रोल कर ले बहुत ही एक मुश्किल चीज़ है, तो बहुत सारी नागवारियाँ साबित हो जाती हैं। कोई सुएज़न उसके जहन में भरा होता है, जब तक वो निकल नहीं आता तब तक उसका मूड ठीक नहीं होता। कई नागवारियाँ इंसान को, कई तकाज़े उसके बढ़ जाते हैं, मुतालबात बढ़ जाते हैं, कई किस्म की नागवारियाँ आती हैं। कुरान की यही आयत क्या कहती है? फ़इन करहतुमूहुन्ना, अगर तुम्हें कोई उनसे कराहत या नागवारी का एहसास हो, अगर तुम्हें उसकी कोई नागवारियाँ महसूस होती हैं जिसकी वजह से तुम तंग आ जाते हो, कि फ़ासा अन तक रहू शैआ, तो तब भी तुमने ये मारूफ का तरीक़ेकार नहीं छोड़ना, तब भी क्या हो कि तुमने सब्र करना है उसके ऊपर। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है तुम्हें कोई चीज़ बुरी लग रही होती है, लेकिन वयजअलल्लाहु फीहि खैरन कसीरा, लेकिन अल्लाह ने उसमें खैर कसीर रखा है। तुम्हें उसमें बहुत सारी मसाइल नज़र आ रहे हैं, कौन बहुत सारी चीज़ें तुम्हें महसूस हो रही हैं, लेकिन उसके ऊपर तुम सब्र करो, सब्र करोगे तो खैर कसीर को पाओगे। हम इस हवाले से आए चंद अहादीस को मुतालिया करते हैं जो आइम अहल बैत अलैहिस्सलाम से वारिद हुई हैं, और इन अहादीस में भी आइम अलैहिस्सलाम ने जिस चीज़ की तरफ ज़्यादा ताकीद की है वो यही है कि इनका एहतराम किया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वमन तखज़ा ज़ौजतन, जो शख्स ज़ौजा को इख्तियार करता है, दवाज़ ज़िंदगी उसने इख्तियार कर ली, फल युक्रिम हा, उसे चाहिए कि उसकी इज्जत करे। अच्छा, इज्जत का मतलब ये नहीं है कि खुद पर और सब घराने पर मुसल्लत कर दें, ये मतलब इंशाल्लाह आगे हम बयान करेंगे कि इज्जत से क्या मुराद है। लेकिन एक माना इज्जत हमारे सामने वाजे, उससे खुश अखलाकी से पेश आया जाए, उससे इजहार मोहब्बत किया जाए, उसको दूसरों के सामने तोहीन उसकी कतन ना की जाए, मारपीट का निशाना ना बनाया जाए, तमस्खुर और मजाक उसका ना उड़ाया जाए, अच्छा उसको तरह तरह से पिंच करके तंग ना किया जाए। लिहाजा ये चीज़ें यकीनन इज्जत के दायरे में है कि ऐसे उमूर अंजाम नहीं दिए जाने चाहिए। हत्ता कि अगर मारपीट की बात आ जाए, बाज़ का तो ऐसा होता है थोड़ी चुटकी काटने की हद तक या हाथ उठाने की हद तक इसकी शदीद मज़म्मत की गई है। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रवायत मनकूल है, फरमाते हैं कि इन्नी अतअज्जब मिम्मन यज़रिबु इमरातहु, मुझे तो उस शख्स के ऊपर ताज्जुब होता है कि जो अपनी जोजा को मारता है, वह हुआ बिज़र्ब औला मिन्हा, ये शख्स ज़्यादा मार के काबिल है, ये जो अपनी खातून पर हाथ उठाता है वो शख्स ज़्यादा इस काबिल है कि उसे मारा जाए। ला तज़रिबु निसाअकुम बिलखशब, लकड़ी या किसी चीज़ के ज़रिए से अपनी ख़वातीन को मत मारो, इन फ़ीहिल क़िसास, इसमें क़िसास है, वो मुतालबा कर सकती है इस चीज़ का कि ये जो जुल्म मेरे ऊपर हुआ है इसका इंसाफ मुझे चाहिए। फिर आगे वलकिन इज़रिबुहुन्ना बिलजुअ वलउरिये, अगर ऐसी नौबत आ जाए या कोई ऐसा मौका आ जाए कि जिसमें, यानी बाज़ ऐसे मवारिद होते हैं कि वो इंशाल्लाह किसी और मौरिद में पढ़ेंगे कि अमूमन हमें घरानों में कम ऐसे चीज़ों का सामना करना पड़ता है कि वो मौरिद बदकारी का मौरिद है, लेकिन इस मौरिद के अलावा हाथ उठाना या किसी किस्म का गालम गलोच करना या अज़ियत देना शरी तौर पर ये जायज़ नहीं है। इसी तरीके से एक और रवायत वारिद हुई है कि फ़ाअय्यु रजलिन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही है, हौला की सनद से है। हौला एक खातून थी और अतर फरोश थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी से अतर ख़रीदा करते थे। तो ये अपने शोहर के बहुत सारे मसाइल इसने डिस्कस किए और वो रवायात में हमारे पास आए। तो बहरहाल इसी रवायत का एक हिस्सा है कि अय्यु रजुलिन लतमा इमरातहु, हर वो शख्स, कोई भी शख्स ऐसा हो कि जो अपनी खातून को मारता है, अमरल्लाहु अज़्ज़ा वजल मालिकन, अल्लाह अज़्ज़ा वजल मालिक को फिर हुक्म देता है, मालिक है जो दोज़ख का पहरेदार है, खाज़निन नैरान है, पहरेदार उसका नाम मालिक है। नजम बलागा में भी इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक जगह पे ये नाम इस्तेमाल किया, फरिश्ता है जो कि पूरे जहन्नम के ऊपर जो पहरेदार बैठा हुआ है, ऑफिसर है इन सब का। तो वहाँ पे है कि मालिकन खाज़िनन नीरान फल यल्तिमुहु अला हुर्र वजही सबईन लतमतन फी नार जहन्नम, जो अपने खातून के ऊपर हाथ उठाता है, अल्लाह इस पहरेदार जो जहन्नम का पहरेदार है जिसकी हैबत से सारे के सारे घबराते हैं, उसको अल्लाह हुक्म देता है कि जाओ इसके चेहरे के ऊपर जहन्नम की आग से 70 दफ़ा एक आग के शोलों से इसको थप्पड़ मारे जाएं या इसको मारा जाए। और फिर इसी तरीके से आगे फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वह अय्यु रजुलिन मिनकुम वदअ यदहु अला शअर इमरातिन मुस्लिमातिन सुम्मिरा कफ्फुहु बिमसामीर मिन नार, कि अगर कोई शख्स ऐसा है कि जिसने अपनी खातून के सर के बालों को पकड़ के खींचा है, तो जहन्नम की मीखों से, कीलों से उसके हाथों के ऊपर कीलें ठोक दी जाएंगी। इसी तरीके से एक और रवायत में वारिद हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नहा अन ज़र्ब निसा मिन गैर वाजिब, एक मौरिद जो ख़ास मौरिद है कुरान ने भी जिक्र किया, उसके अलावा ख़वातीन को मारने से शिद्दत से नहीं की गई है, नफ़ी की गई है। एक और रवायत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अवाइलिल लियाली में वारिद हुई है, ये देखें ये आया रवायात तशरी हैं, व आशिरहुन्ना बिलमारूफ सूरह निसा आयत नंबर 19 की, ये उसकी तफसीर बन रही है कि कैसे तुम कि यानी ये वाला रवैया मत इख्तियार करो कि फ़ैयुमा रजुलिन, जो शख्स भी ज़रबा इमरातहु फ़ौक सलासिन, जो तीन दफ़ा से ऊपर अगर एक खातून को मार दे, अकामहुल्लाहु यौमल क़ियामा अला रुऊसिल खलाइक, तो सारी मखलूक में उसको नुमाया अल्लाह ताला करेगा और फिर उसको जलील व ख़ार सब की निगाह में करेगा और सारा का सारा महशर देखेगा कि उसने किस कदर बदतरीन एक अमल अंजाम दिया है। इसी तरीके से उसको मसलन तलाक का हक मर्द को है, इस तलाक के हक को जितलाने और इस्तेमाल करने की धमकियाँ ना दे, खुदा को सख्त ना पसंद है। अवालियुल आली में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माज़ाला जिब्रील यूसीन फी अम्र निसा, कि मुझे मुसलसल जिब्रील आके ख़वातीन के बारे में वसीयत करते रहे, बताते रहे कि इनसे नरमी का सलूक करो, मोहब्बत का सलूक करो। इस कदर उन्होंने मुझे जिब्रील ने आके वसीयत की है, हत्ता जनन तो कि मैं ये गुमान करने लगा अन्नहू सयहरमो तलाक हुन्ना, कि उनको तलाक देना शायद हराम करार दे दिया जाए, इस कदर उनके हवाले से तौसिया किया गया है। या इसी तरीके से रवायात में ये बात वारिद हुई है कि ख़वातीन चूँकि तुम्हारे अयाल हैं, अयाल कैदियों की मानद शुमार होते हैं, तशबीह दी गई है, क्योंकि तुम्हारे हाथों के ज़रिए से वो तुम उनकी तदबीर कर रहे हो तो तुम्हारे हाथों गोया के कैदी की मानद बन गई हैं, लिहाजा उनके साथ बेहतरीन सलूक करो, मददगारी वाला सलूक करो, उनकी ख्वाहिशात जो हैं जायज़ ख्वाहिशात उन्हें पूरा करो, अगर उनका रिज़्क़ अल्लाह ने तुम्हें दिया है तो खुल के उनके ऊपर ख़र्च करो और उसे जितलाओ मत। लिहाजा इस मौजू पर आगे रवायात हैं, यहाँ पर हम इख्तिताम करते हैं कि ख़ातून की जो हैसियत और अहमियत इज्तमाई दुनिया में अल्लाह ताला ने करार दी है वो ये है कि उसके साथ पहला हुक्म जो वाजिब हुक्म कुरान ने दिए फ़आशिरूहुन्ना, फ़ेल अम्र है कि तुम लोग मुआशरत करो बिलमारूफ़ है, और अगर तुम्हें किसी नागवारियों का सामना करना पड़ता है तो बहुत सारी ऐसे मरतबा होता है कि तुम्हें कोई चीज़ नागवार लग रही होती है लेकिन वयजअलल्लाहु फ़ीहे खैरन कसीरा, अल्लाह ने उसमें तुम्हारे लिए खैर कसीर रखा है, लिहाजा खैर कसीर है ये खातून अगर उसके साथ वो मामला किया जाए जो रहनुमाई कुरान और रवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम कर रही हैं। तो ये इज़्ज़त के इनवान से हमारे पास एक मौरिद आ गया, इंशाल्लाह अगली हैसियत को हम मुतालिया करेंगे कि नान नफका के बाद इज़्ज़त जो है ख़ातून को देना ये सबसे अहम तरीन एक मौरिद है। ये इज़्ज़त देना सब के लिए लाजिम है, माँ को भी, बेटी को भी, जोजा को भी, अच्छा ये इसी तरह खालों हैं, फुप्पों हैं, कोई भी हो, ख़ातून को इज़्ज़त दी जाए, उसके साथ मुआशरत का तरीक़ेकार ये है। और इज़्ज़त देना में यही है कि उसे गालम गलोच ना करें, तलाक़ वगैरह के ताने ना दें और मार पीट किसी सूरत ना करें। मार पीट से मुतालिक आपने अहादीस को मुतालिया कर लिया। अगली हैसियत जो कुरान करीम की आयात से साबित होती है वो इंशाल्लाह अगले दर्स में या किसी और मौरिद में आपकी खिदमत में जिक्र की जाएगी। अल्लाह सुबहान व तआला हम सब को बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद कुरान करीम व अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुतमस्सिक होने की तौफीक इनायत फरमाए। खुदावंद मुताल बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद जो हुकूक़ हमारी गर्दनों पर एक दूसरे के लिए आयद होते हैं उन्हें निभाने की तौफीक इनायत फरमाए। एक सालिम और एक बेहतरीन घराने को वजूद देने की अल्लाह ताला तौफीक इनायत फरमाए। और जो मरहूमीन हैं, सब मरहूमीन जो हमारे अजीज़ रिश्तेदार हैं या दीगर मोमिनीन, अल्लाह ताला बिहक मोहम्मद व आले मोहम्मद उनकी मगफरत फरमाए, उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए, अहले बैत अलैहिस्सलाम की शिफात उन्हें शामिल हाल फरमाएँ। सल्लल्लाहु अला सैयदिना मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।